नमस्ते सभी श्रोतागण को, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु का अर्थ हमारा जो परंपरा में दिया गया है, गुकारोस्तु अंधकारः रुकारोस्तु तद् निवर्तकः। गु माने जो अज्ञान का संकेत है, फॉर एग्जाम्पल डाउट्स, किसी भी विषय पर अज्ञान हो उसका जो निवारण करता है, रु माने निवर्तक, तो रुकार से वो निवर्तन हो जाता है। इस दोनों का मिश्रण है वो गुरु। गुरु का ऐसे दायित्व है जिस तरह शिष्य को समझना चाहिए उसी भाषा में समझाता है, उसको गुरु कहलाते हैं हम। गुरु में दो तरह के गुरु होते हैं, मतलब शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु माने बचपन से हमें जो एकेडमिकली शिक्षा के रूप माध्यम से या परीक्षा के रूप माध्यम से हमें शिक्षण देता है, वो शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु जो है वो परंपरा से, गुरु परंपरा में वो आए हुए है। हम इसके बारे में एक श्लोक बताना चाहते हैं। सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। सदा शिव तो आदि गुरु है। महाविष्णु ने बहुत सारे अवतार लिया, दशावतार से उस प्रमुख रूप से हम बोलते हैं, मगर शंकर भगवान ने एक ही रूप लिया, वो गुरु का अवतार। सो इसीलिए शंकराचार्य का जो मीडियम, मतलब मध्यम रूप से हम लेते हैं, आज तक जो उस परंपरा में आए हैं, उस गुरु परंपरा को हम दीक्षा गुरु के रूप से स्वीकार करते हैं।
जी मीना जी, बहुत ही खूबसूरत आपने श्लोक सुनाया हमें। ये बताइए मीना जी कि भारतीय सभ्यता में गुरु शिष्य परंपरा भी हुआ करती थी, हालांकि आजकल मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, हो सकता है थोड़ी बहुत रह गई हो। उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से होती थी ये परंपरा, जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी।
हाँ, गुरु शिष्य परंपरा माने आत्रेय ऋषि, अत्रि ऋषि से, सप्त ऋषियों में अत्रि ऋषि ज्ञान के प्रवर्तक है। अत्रि ऋषि के जो अनुयायी जो है या शिष्य जो है, उस परंपरा में जो आए हैं, वो जो मार्गदर्शन धर्म में, अर्थ में, काम में, जो इन तीनों प्रकार के ज्ञान देते थे, वो मोक्ष मार्ग में लेने के लिए सहायता होती थी। इसीलिए भगवती माता सरस्वती को भी अज्ञाननाशिनी गुरु या वाग्देवी ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि उसको खड्गमाला भी एक का नाम है, जो हमारा अज्ञान को ज्ञान की खड्ग से जो छेदित करती है, उस देवता को हम खड्गमाला देवता, ज्ञान रूपिणी वाग्देवता बोलते हैं। इस तरह का सूक्ष्म विचारों को जो मार्गदर्शन देता है वो गुरु है। हर एक को ये मार्गदर्शन नहीं मिलता, क्योंकि शिष्य इच्छुक होनी चाहिए। शिष्य के इच्छा के अनुसार गुरु उस शिष्य का मार्गदर्शन करता है। इसीलिए शिष्य चार तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं हम अधिकारी, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, अधमाधिकारी, अधमाधमाधिकारी, चार तरह के, फोर लेवल्स ऑफ शिष्यास होते हैं। अच्छे शिष्य जो है वो बहुत उच्च तरह का प्रश्न पूछता है, उसके हिसाब से गुरु टास्क भी देता है। दैट डजंट मीन लीस्ट को, लीस्ट वन, द लास्ट वन को गुरु छोड़ देता है, ऐसे नहीं है। अंतिम शिष्य जो अधमाधम जो है उसको छोड़ देता है, ऐसे नहीं है। सुलभाति सुलभ विषय से उस शिष्य को भी उत्तम शिष्य बना देता है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द गुरु।
जी मीना जी, ये बताइए, जो मैं समझी कि इसका मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें एक कि चाहे कोई शिष्य पीछे हो, अगर जो भी जिस भी विषय में उस वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, गुरु का ये दायित्व होता था कि वो सभी को मतलब उनकी इच्छा अनुसार और उनकी क्षमता अनुसार उनके अज्ञान को दूर करे, और पीछे से पीछे जो शिष्य होता था उसको भी उत्तम शिष्य बनाए।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कोई शिष्य हो गुरुकुल में जो आए, ये गुरु पिता बन जाता था, गुरु माता बन जाता था, क्योंकि जैसे माँ समझाती है उस तरह का अधमाधिकारी जो शिष्य है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ज्ञान का जो विचार, उसको भी माँ की तरह वो प्यार से बहुत अच्छी तरह से, जैसे उसको डाउन टू अर्थ ऐसे बोलते हैं ना हम, शिष्य का जो ज्ञान के स्तर पर आकर वो समझाता था। इसीलिए गुरुकुल में हर एक अच्छे से अच्छे शिष्य बनकर वो पास करते थे।
जी, और ये भी पूछना चाहते हैं कि शिष्यों को क्या गुरु को चुनौती देने का, चैलेंज करने का भी क्या मौका मिलता था? वो जो एक वाद विवाद वितर्क प्रश्न करना, क्या वो भी गुरु शिष्य परंपरा का भाग था?
बिल्कुल ठीक कहा। आप उपनिषदों को देखे तो कई बार गुरु शिष्य बनता था, ऐसे शिष्य बन के ऐसे प्रश्न पूछता था, शिष्य गुरु बन के उत्तर देता था। बहुत प्रैक्टिकली दे यूज टू टीच। एक बार आपका मस्तिष्क में सब कुछ, सब ज्ञान के विचार भर गया, बाद में उसको प्रयोग रूप से करने के लिए बहुत सुविधा होता था। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल पद्धति बहुत समय पर रहा था, रहा है, रहेगा।
मीना जी, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।